कुछ महीने पहले मुझे EUOS नाम का एक प्रोजेक्ट मिला। ये दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने इसे हमारे वीडियो आइडिया की लिस्ट में शामिल कर लिया और फिर भूल गया। एक महीने बाद ये किसी तरह हर न्यूज़ और यूट्यूब होम पेज पर पहुंच गया, और फिर भी मेरा मानना है कि उनमें से ज्यादातर लोग इसका मतलब पूरी तरह से भूल गए। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ऑज एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फेडोरा पर आधारित है और इसे डेवलपर रॉबर्ट रमैन ने बनाया है। अगर आप इसे ऐसे ही बोलते हैं तो वह यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर में टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी यूनिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर के प्रमुख हैं। स्पष्ट रूप से बता दूं कि ऑज रॉबर्ट का फ्री टाइम प्रोजेक्ट है और इसे EU के किसी भी संस्थान ने किसी भी तरह से अपनाया नहीं है। फिलहाल यह एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट है, हालांकि यह एक व्यक्ति का काफी कुशल प्रोजेक्ट है। इसका अंतिम लक्ष्य पब्लिक यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलना है। इससे कुछ अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की जरूरतें आती हैं जिन्हें ऑस को पूरा करना होगा, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टर के हिसाब से आसानी से अपनाना और बड़े पैमाने पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैनेजमेंट को आसान बनाना। EOS को घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि सिस्टम प्रशासकों के लिए बताया गया है जो कई कॉर्पोरेट कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्वचालित रूप से लिनक्स को तैनात करना चाहते हैं। EOS बूट करने योग्य कंटेनर तकनीक और उपयोगकर्ताओं और उनके डेटा को प्रबंधित करने के लिए एक सामान्य विधि पर आधारित एक सामान्य लिनक्स OS का प्रस्ताव करना चाहता है। तो आइए तुरंत अस को एक बड़े संदर्भ में रखें। व्यापक पहल सार्वजनिक धन सार्वजनिक कोड है जिसका उद्देश्य करदाताओं के पैसे से बनाए गए सभी सॉफ्टवेयर को मुफ्त सॉफ्टवेयर के रूप में जारी करना है और आमतौर पर सार्वजनिक संस्थानों के भीतर ओपन सोर्स के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस पहल की कुछ स्थानीय सफलताएं रही हैं। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण मनीच शहर था जिसने अपने सभी डेस्कटॉप के 80% से अधिक को लिमॉक्स नामक लिनक्स व्युत्पन्न में स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि 2017 में इस कदम को वापस ले लिया गया और शहर फिर से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उपयोग करने लगा। फिर भी लिमक्स जर्मन तकनीकी निरीक्षण संघ द्वारा उद्योग उपयोग के लिए प्रमाणित पहला लिनक्स डेस्कटॉप था और 10 यूरो मिलियन यूरो से अधिक बचाने में कामयाब रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास तीन उदाहरण हैं। रूसी संघ में एस्ट्रल लिनक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चीनी सरकारी क्षेत्र में 90% बाजार हिस्सेदारी के साथ काइलिन और नियो काइलिंग और कुबान सार्वजनिक क्षेत्र में नोवल लिनक्स का उपयोग किया जाता है। आप तीनों के बीच कुछ संबंध देख सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर भी रॉबर्ट बताते हैं कि ये उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लिनक्स की तैनाती की व्यवहार्यता पर कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं। ये केवल राजनीतिक समर्थन प्राथमिकता और धन का मामला है। तो यूरोपीय संघ में इसके लिए राजनीतिक समर्थन क्यों नहीं है, खासकर उन स्पष्ट लाभों को देखते हुए जो माइग्रेशन लाएंगे? हम कर बचत के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आपको वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए भुगतान नहीं करना होगा। आप सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लॉक इन से भी बचेंगे। विंडोज के साथ आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के समर्थन के लिए पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के हाथों में हैं, और इससे भी बदतर, विंडोज के समर्थित संस्करणों को चलाने के लिए आपको किस प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से खुले मानक नवाचार को बढ़ावा देते हैं। वे कम आईटी प्रशासन संसाधन लेते हैं और दुनिया भर में मुफ्त सॉफ्टवेयर समुदाय से लाभ उठाते हैं। क्या यही सब चीन और रूस ने लिनक्स के पक्ष में विंडोज को छोड़ने के लिए प्रेरित किया? अगर मुझे शर्त लगानी पड़े तो शायद कोई और कारण होगा जिसे हमारे पसंदीदा विषय राजनीति के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। बेशक चीन, रूस और अमेरिका ऐसे नहीं हैं जिन्हें मैं मित्रवत सहयोगी कहूंगा। इसलिए इस देश ने अपने सरकारी विभागों को विंडोज जैसे बंद स्रोत वाले US आधारित सॉफ्टवेयर से स्वतंत्र बनाने के लिए आंतरिक प्रयास शुरू किए होंगे। लिनक्स पर स्विच करके वे ऑपरेटिंग सिस्टम में वेक्टर की जांच करने और अपने स्वयं के फ्लेवर को विकसित करने में सक्षम हैं, जिस पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। दूसरी ओर EU को वर्षों से US का सहयोगी माना जाता रहा है। हालांकि हाल ही में महान अस प्रशासन के कारण ये कथन थोड़ा और संदिग्ध होने लगा है। इसलिए EUOS पहल का समय संभवतः आकस्मिक नहीं है। वास्तव में मैं ये भी मानता हूं कि वर्तमान राजनीतिक माहौल अस के लॉक किए गए स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के उपयोग को कुछ हद तक जोखिम भरा बनाता है और यह संप्रभु विकल्पों पर विचार करने का समय हो सकता है। हालांकि संप्रभु विकल्पों से हमारा क्या मतलब होना चाहिए, इस पर बहुत चर्चा हुई है। ब्रॉडी रॉबर्टसन जैसे कई लोगों ने उनके वीडियो देखे हैं। उन्होंने फेडोरा के इस्तेमाल के लिए ईयू की आलोचना की है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अमेरिकी कंपनी रेड हैट से संबंध है। रजिस्टर ने फेडोरा को अमेरिकी डीआरओ तक कहा है, जो कि मैं कभी नहीं कहना चाहूंगा। दोबारा, फेडोरा किसी विशेष देश द्वारा या किसी विशेष देश में विकसित नहीं किया गया है और टीम अंतर्राष्ट्रीय है। हालांकि यह सच है कि कई कोर कोड लीगल और अन्य योगदानकर्ता रेड हैट के कर्मचारी हैं। हालांकि इस तरह की सोच को लागू करना जल्दी ही जटिल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्रॉडी ने यह भी कहा कि यूओज, मैं इसे ओज उच्चारित कर सकता हूं, किटी प्लाज्मा डेस्कटॉप का उपयोग करता है और उनका कहना है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किटी एफ जर्मनी में स्थित है और इसलिए उनका कहना है कि यह कहना उचित है कि किटी जर्मन है। तो सबसे पहले ये कहना उचित नहीं है कि क्यों एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिसे किसी विशेष देश द्वारा या किसी विशेष देश में विकसित नहीं किया गया है। केएफ गैर लाभकारी संस्था, हाँ जर्मन है, लेकिन ये केडी से अलग इकाई है और प्लाज्मा जैसे उत्पाद केडीएफ द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वे केडी द्वारा बनाए गए हैं। ये कहना शायद बेवकूफी भरा लगे, लेकिन कानूनी रूप से यह प्रासंगिक है क्योंकि किटी के उत्पाद जर्मनी में कानूनी रूप से विकसित नहीं किए जाते हैं और व्यवहारिक रूप से किटी डेवलपर्स का सबसे आम मूल देश जर्मनी नहीं है। और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कई मुख्य किटी योगदानकर्ता, जैसे कि मैं, अगर मैं खुद को एक मुख्य किटी योगदानकर्ता कह सकता हूं, टेक पैलेडन में कार्यरत हैं, जो एक अमेरिकी देश की कंपनी है। इससे भी बुरी बात यह है कि टेक पैलेडन के प्राथमिक मालिक निक ग्राहम किटी एफ के बोर्ड में भी हैं। इस प्रकार उसी तर्क से जैसे फेडरिकी के भी एक अमेरिकी कंपनी के साथ सीधे और मजबूत संबंध हैं। ब्रॉडी को इस बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी नेट का इंटरव्यू लिया है। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, लेकिन मुझे वास्तव में खेद है, मैं बहुत जल्द इसे देखने जा रहा हूं। और हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूर, लिनक्स एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, लेकिन इसके सीधे संबंध हैं और इसे लिनक्स फाउंडेशन से धन मिलता है जो यूएस आधारित है। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स एक लाभकारी अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यहां तक कि पाइपवायर जैसे ओएस घटकों का भी रेड हैट से सीधा संबंध है। इस प्रकार यदि संप्रभु सॉफ्टवेयर के लिए हमारा मानदंड अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधा संबंध नहीं है तो मुझे नहीं पता। चलिए हार मान लेते हैं, हम वहां कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मेरा मानना है कि यह एक प्रवाह तर्क है। चलिए इसके बजाय अधिक व्यवहारिक बात करते हैं। अमेरिकी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में समस्या सुरक्षा है क्योंकि उनमें सरकारी वेक्टर और स्वतंत्रता शामिल हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के भविष्य के निर्णयों का ईयू संस्थानों पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो उनके सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। ये मुख्य जोखिम है जिन्हें हम कम करना चाहते हैं। जाहिर है, मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम इसकी सुरक्षा के मामले में सुरक्षित हैं, क्योंकि विकास सार्वजनिक रूप से होता है। अमेरिकी सरकार हट के पास जाकर उनसे एक बैकडोर जोड़ने के लिए नहीं कह सकती, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, या कम से कम यह विंडोज की तुलना में बहुत अधिक जटिल होगा, क्योंकि आपको इसे सार्वजनिक रूप से करना होगा, इस प्रकार पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना होगा। स्वतंत्रता की बात करते हैं, मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी यहां सुरक्षा की एक अच्छी परत प्रदान करते हैं। अगर रेडिट कल फेडोरा को खत्म करने का फैसला करता है तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर प्रोजेक्ट को फोक कर दिया जाएगा, शायद वह भी नहीं। लेकिन अगर मौजूदा समुदाय विकास जारी रखता है, हालांकि धीमी गति से, अगर जरूरत पड़ी तो ईयू अपने सॉफ्टवेयर के लिए अपने फोक बना सकता है और उनके विकास को फंड कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहां एक निकास रणनीति प्रदान करता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। मुझे लगता है कि यहां मेरे तर्कों की ताकत इस तथ्य से साबित होती है कि एस्ट्रल लिनक्स और काइलिन या किलिंग, मुझे नहीं पता, दोनों पूरी तरह से लिनक्स वितरण और मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित हैं जो दुनिया भर में विकसित किए गए हैं, जिसमें यूएस भी शामिल है। स्वतंत्रता चाहने के उनके पास ठोस कारण हैं और फिर भी वे मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं रखते हैं, भले ही उसके दूसरे देशों से संबंध हों। मुझे लगता है कि रॉबर्ट भी मुझसे सहमत हैं क्योंकि वे समझदार हैं। उनका कहना है कि EUOS मेरी स्क्रीन स्लीप मोड में चली गई। यह ऐसी चीज नहीं है जो मैं चाहता हूँ। ओह, मैं कह रहा था कि रॉबर्ट भी मुझसे सहमत हैं क्योंकि वे समझदार हैं। उनका कहना है कि ओस को संप्रभुता और संरक्षणवाद को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्त और खुले स्रोत घटकों पर भरोसा करने में कोई समस्या नहीं है और कई बार यह व्यवहार में अपरिहार्य होता है। हालांकि AOS व्यावसायिक डेटा और टेलीमेट्री डेटा पर सख्त नियंत्रण बनाए रखने को बढ़ावा देता है। इसमें इस तरह के डेटा को ऑन प्रीमाइस या क्लाउड पर स्टोर करने की स्वतंत्र पसंद शामिल है और इसके अलावा ओ के भीतर दिए गए मुक्त और खुले स्रोत घटक के लिए जानकारी की उपलब्धता पर विचार किया जाएगा। साथ ही मुझे लगता है कि हम चर्चा के संप्रभुता वाले हिस्से से भटक रहे हैं, जबकि EUOS का उद्देश्य इस अवधारणा का प्रमाण देना था कि आप ओ सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लिनक्स डेस्कटॉप तैनात कर सकते हैं, जो कि एक अलग बात है। हालांकि मुझे इस बारे में कुछ समाचार लेखों का संक्षेप में मजाक उड़ाने की अनुमति दें। मैंने पहले ही अमेरिकी DRO रजिस्टर की आलोचना की है, लेकिन मेरा मानना है कि लिनक्स जर्नल ने भी ओस को यूरोप के लिए डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक साहसिक कदम प्रकाशित करके मुद्दे को गंभीरता से लिया। एक साहसिक कदम? क्या हम वाकई एक अनौपचारिक एक व्यक्ति परियोजना को पूरे EU के लिए डिजिटल संप्रभुता की ओर एक साहसिक कदम कह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर वो इस परियोजना को अपनाता है तो यह एक साहसिक कदम होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसके फॉस का लेख अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी पहली टिप्पणी बहुत पसंद आई। अगर इसके पीछे कोई अमेरिकी कॉर्पोरेट है तो इसमें गोपनीयता और ऐसी कोई बात नहीं होगी। अमेरिका में आपको सरकार को अपने सॉफ्टवेयर सुरक्षा तक पहुंच देने के लिए मजबूर किया जाता है या आप नीचे चले जाते हैं, जो न केवल सीधे तौर पर गलत है बल्कि इस बिंदु को भी पूरी तरह से नजरअंदाज करता है कि रेड हैट के पास फेडोरा का स्वामित्व नहीं है, नहीं वे वास्तव में इसमें वेक्टर छिपा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओस परियोजना ने ओपन सुअर 2 का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हाल ही में एक लेख जारी किया जिसमें परियोजना की कुछ आलोचना की गई है। उनका कहना है कि वर्तमान संघीय प्लस KD दिशा परिपक्व है, लेकिन एक DRO और एक डेस्कटॉप वातावरण पर निर्भर रहने से कुछ जोखिम उत्पन्न होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। इसके बजाय सभी सरकारों के लिए ये समझदारी होगी कि वे आयन के साथ कोम जैसे विकल्पों को अपनाएं और साथ ही कल्पा के एक और अपरिवर्तनीय प्लाज्मा आधारित विकल्प को अपनाएं। सुरक्षा क्यों? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन और डेस्कटॉप सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर के जोखिम को कम करते हैं। अगर कमियां सामने आती हैं तो वे एक साथ हर सिस्टम को प्रभावित नहीं करेंगी। ये समझने योग्य स्थिति है। केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक डेस्कटॉप की पेशकश करके आप विशेष रूप से उन प्रोजेक्ट से संबंधित घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ओस प्रोजेक्ट ने फेडर और क को प्लेसहोल्डर के रूप में चुना क्योंकि कॉन्सेप्ट का वास्तविक प्रमाण सिस्टम की तैनाती के बारे में है। फेडोरा के पास इसके पीछे एक तर्क है, लेकिन बहुत तकनीकी है। हालांकि मैं अपनी एक आलोचना सामने रखना चाहता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं। क्या हम सुनिश्चित हैं कि हम यहां केवल एक नाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? अगर हम स्वयं प्रोजेक्ट की जांच करें तो एकमात्र रिपोजिटरी में लगभग कोई कोड नहीं है और स्क्रीन पर वर्तमान में दिखाए जा रहे लगभग सभी फोल्डर खाली हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और भविष्य के नियोजित कार्यों को देखते हैं तो हमारे पास ओस के लिए दस्तावेज उपयोग के मामले, दस्तावेज आवश्यकताएं, लक्ष्यों और अवधारणा के प्रमाण के दायरे का दस्तावेज, आवश्यक अनुप्रयोगों की सूची, सरकारों द्वारा अमेरिकी समर्थन के लिए एक घोषणा पत्र प्रकाशित करना, सिस्टम में ओस ब्रांडिंग जोड़ना और बहुत कुछ है। ये सभी आवश्यक कार्य हैं, लेकिन इससे मुझे लगता है कि यह परियोजना अवधारणा चरण में है जहां यह सुनिश्चित भी नहीं है कि यह क्या बनना चाहता है या कैसे। इस बारे में अभी कुछ भी ठोस नहीं है। और फिर से यह एक व्यक्ति का अनौपचारिक प्रोजेक्ट है और इसमें से कोई भी ओ संस्थान द्वारा समर्थित नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी समझ से अभी AOS एक व्यक्ति का विचार है और मुझे समझ नहीं आता कि हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। या मुझे लगता है कि मैं समझता हूं। वास्तव में ये स्वयं परियोजना के बारे में नहीं है, बल्कि AOS एक अमूर्त अवधारणा पर चर्चा करने का एक बहाना है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह वर्तमान समय पर लागू होता है। EU से स्वतंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का विचार, मुझे लगता है कि यही कारण है कि हर कोई ओस की संप्रभुता में इतनी दिलचस्पी रखता है, हालांकि अभी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र का वितरण प्रमुख हिस्सा है। हम असंप्रभुता पर चर्चा करना चाहते हैं। हमें असंप्रभुता पर चर्चा करने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए हमने एक ऐसा विषय लिया है जो अन्यथा एक नगण्य विषय होता, मुझे लगता है, और हम सब इस पर बात करने लगे। वैसे, रॉबर्ट, बेझिझक मुझसे संपर्क करें और बताएं कि मैं इस बारे में गलत हूं और ओज वास्तव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फिर, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मैं यहां कुछ चूक सकता हूं। फिर भी, आइए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओपन सोर्स और डिजिटल संप्रभुता को अपनाने के लिए यूरोपीय संघ क्या कर रहा है? यह वीडियो पहले से ही लंबा है, लेकिन आइए एक मोटा अवलोकन प्रदान करने का प्रयास करें। हम ऐसा यूरोपीय आयोग में प्रस्तुत एक याचिका के कारण कर सकते हैं। इस याचिका में ओसे ईयू लिनक्स नामक एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने और उसे सभी ईयू सदस्य राज्यों में सार्वजनिक प्रशासन में लागू करने के लिए कहा गया है। फिर से, लाभों को माइक्रोसॉफ्ट से स्वतंत्रता, जीडीपीआर का अनुपालन, पारदर्शिता और बहुत कुछ सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले कि आप उत्साहित हो जाएं, आयोग का जवाब है कि ओलिनक्स स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई औपचारिक परियोजना नहीं है। ये समझ में आता है, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो आयोग की याचिका के जरिए हासिल की जा सकती हैं। ये सूचना के अनुरोध के समान है। फिर भी, प्रतिक्रिया में लोक प्रशासन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में ईयू द्वारा किए जा रहे सभी मौजूदा प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले, विधान। मैंने उनमें से कई को कवर किया है, जैसे कि डिजिटल मार्केट एक्ट, लेकिन हाल ही में हमने इंटरऑपरेबल यूरोप एक्ट देखा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सिस्टम के बीच सहज सहयोग को बढ़ावा देना है और ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड के उपयोग को प्राथमिकता देना है। डिजिटल यूरोप प्रोग्राम, सीएफ टेलीकॉम और IS2 इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम भी हैं जो ओपन सोर्स समाधानों के माध्यम से ईयू डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करते हैं। होराइजन यूरोप कई तरह की परियोजनाओं को भी फंड करता है जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का विकास और उपयोग शामिल है। इसके साथ ही इसकी अगली पीढ़ी के इंटरनेट ने 1000 से अधिक समुदाय संचालित ओपन सोर्स परियोजनाओं में 140 मिलियन यूरो से अधिक का निवेश किया है। ओपन सोर्स ऑब्जर्वेटर नाम की एक संस्था भी है, मैं यह नहीं कर सकता। ओपन सोर्स ऑब्जर्वेटरी, जो ईयू में ओपन सोर्स के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाने वाली खबरों और केस स्टडीज पर नजर रखती है। इसमें राष्ट्रीय सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के इरादों के साथ मेल खाते उचित मालिकाना ऑफिस सहयोग सूट के लिए ओपन सोर्स विकल्प विकसित करने और लागू करने के हालिया प्रयास शामिल हैं। आयोग आंतरिक रूप से भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, उनकी अधिकांश वेबसाइटें ड्रूपल से बनी हैं और वे डेटा सेंटर में ज्यादातर लिनक्स का उपयोग करते हैं। एक सामुदायिक ओपन सोर्स रणनीति भी है जो संगठनों के भीतर ओपन सोर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, कोड के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देती है। europe.au और अधिक टिकाऊ और पारदर्शी डिजिटल बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त करता है। कम्युनिटी कमीशन नेक्स्ट क्लाउड जैसे ओपन सोर्स समाधानों पर बग बाउंटी और हैथॉन का आयोजन करता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ओपन सोर्स अपनाने का समर्थन करता है। हालांकि, ये सब अभी भी सरकारी अनुभाग में लिनक्स को मानक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने से बहुत दूर है और ईमानदारी से कहें तो कॉर्पोरेट उपयोग के लिए लिनक्स को खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि मैं ओज जैसे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपनाता हूं, मुझे गलत मत समझिए। हालांकि, मुझे लगता है कि इस बार की खबरें थोड़ी ज्यादा उत्साहित हो गईं और प्रोजेक्ट के मौजूदा लक्ष्य और आकार को गलत समझ लिया गया। यही कारण है कि मैंने इसके बारे में 20 मिनट लंबा एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैं समझदार हूं।